ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार।
नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपके समक्ष 1 से 15 अक्टूबर का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। भारत के विजन से दुनिया का आर्थिक मंच माना जाने वाला G20 समूह अब सही अर्थों में जन केंद्रित G20 बन गया है और शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली घोषणा पत्र एक मील का पत्थर साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विश्व मंगल के दृष्टिकोण ने एक असाधारण वैश्विक राजनीतिक विरासत बनाई है, जो न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए एक जीत है। G20 शिखर सम्मेलन और वर्ष भर चली बैठकों से भारतीयता से दुनिया का साक्षात्कार हुआ है। भारत की अध्यक्षता में G20 के इस शिखर सम्मेलन से लेकर पूरे वर्ष की यात्रा ही हमारी इस बार की आवरण कथा बनी है, जिस पर कार्यक्रम के पिछले अंक से ही हम चर्चा कर रहे हैं। G20 अध्यक्षता संभालने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्य उन्मुख होगी। इसी रणनीति और सोच से भारत आगे बढ़ा। G20 शेरपा की बैठक हो या फिर अलग अलग समूह और संबंधित मंत्री स्तरीय बैठक, ऐसी योजना बनाई कि भारत की सॉफ्ट पावर, इंजीनियरिंग और सफलतापूर्वक बड़े वैश्विक आयोजन करने की क्षमता विश्व देख समझ सके। अरुणाचल प्रदेश हो या श्रीनगर, देश के 60 शहरों में बैठक आयोजित कर भारत ने G20 को बनाया पीपल्स G20, जिसका दुनिया ने भी लोहा माना।
G20 बैठकों की श्रृंखला को भारत ने कुछ इस तरह से तैयार किया कि सदस्य और आमंत्रित सदस्य राष्ट्र सहित बाकी देशों को अपनी क्षमता और संकल्प से परिचित कराया जा सके। आतंकी घटनाओं के कारण होने वाले भय के माहौल को खत्म करके जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण वैश्विक आयोजन की क्षमता हासिल कर ली गई है। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 22 से 24 मई के बीच हुई बैठक में बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों की भागीदारी रही। भारत ने 2022 में सबसे अधिक 1.88 करोड़ पर्यटकों के आगमन को जम्मू और कश्मीर में जमीनी परिवर्तन के संकेत के तौर पर पेश किया। यहां पहुंचे G20 प्रतिनिधियों ने शिकारा और नौकायन का बेखौफ होकर लुत्फ उठाया। इससे पूर्व पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक कच्छ के रण में तो दूसरी बैठक दार्जिलिंग सिलीगुड़ी में हुई। वाराणसी में 17 से 19 अप्रैल तक चली G20 के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक को भारत की अध्यक्षता में हुई 100वीं बैठक के जश्न का प्रतीक बनाया गया। वाराणसी में 11 से 13 जून के बीच G20 विकास मंत्रियों की बैठक भी हुई, जहां वैश्विक प्रतिनिधियों ने गंगा आरती की आस्था और सांस्कृतिक विरासत के जुड़ाव को महसूस किया। यही G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक 26 अगस्त को हुई। इन मंत्रियों ने यहां भारतीय संस्कृति, गंगा के प्रति आस्था और अन्य प्राचीन विरासतों को भी देखा।
कर्नाटक के हम्पी में G20 शेरपाओं की तीसरी बैठक 13 से 16 जुलाई के बीच हुई। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी विजयनगर साम्राज्य की आखिरी राजधानी थी। यहाँ शानदार द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, जिसे G20 प्रतिनिधियों ने देखा। हम्पी के विजया विट्ठल मंदिर में 16वीं शताब्दी के राजा कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित राजसी पत्थर का रथ देखने के लिए भी प्रतिनिधियों को ले जाया गया। आज किसी काम को बड़े स्तर पर करने की बात आती है तो सहज ही भारत का नाम आ जाता है। G20 की अध्यक्षता भी इसका अपवाद नहीं है। यहाँ भी सर्वाधिक 73 परिणाम और 39 संलग्न दस्तावेज के साथ 112 महत्वपूर्ण निर्णय सामने आए, जो पिछली अध्यक्षता के मुकाबले 2.5 गुना से अधिक है। शांतिपूर्ण और टिकाऊ विश्व के लिए महात्मा गांधी के चिरमय और पथ प्रदर्शक संदेश आज भी प्रकाशमान है। यही कारण है कि G20 सम्मेलन में शामिल होने भारत आए राष्ट्राध्यक्षों ने राष्ट्रपिता के समाधि स्थल राजघाट पर जाकर उनके जीवन मूल्यों से प्रेरणा ली। श्रद्धांजलि के दौरान आगे आगे प्रधानमंत्री मोदी और पीछे पीछे G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, इस दृश्य ने न सिर्फ भारतवासियों को गौरवान्वित किया बल्कि एक बार फिर सिद्ध किया कि आज भी साबरमती के संत के आदर्श वैश्विक भविष्य के सामूहिक दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करते हैं।
भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर दुनिया भर से राष्ट्राध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों का नई दिल्ली में आगमन हुआ। G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर मुख्य सम्मेलन में भाग लेने से अलग इन राष्ट्राध्यक्षों और संगठनों के प्रमुख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में जहां इन राष्ट्राध्यक्षों ने G20 के सफल आयोजन के लिए भारत की सराहना की, वहीं दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन से मुलाकात की। बाइडेन राष्ट्रपति के रूप में पहली बार भारत के दौरे पर आए थे। भारत अमेरिका के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान, नवाचार, संस्कृति और दोनों देशों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों सहित द्विपक्षीय सहयोग में निरंतर गति बनाए रखने पर सहमति बनी। राष्ट्रपति बाइडेन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक लैंडिंग पर प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय सहयोग में विविधता लाने के बारे में प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ सार्थक बातचीत की। दोनों नेता संपर्क, संस्कृति के साथ साथ दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंधों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर भी सहमत हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर मुख्य सम्मेलन से इतर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की यह पहली भारत यात्रा थी। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ रोड मैप 2030 के अनुसार द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इनमें विशेष रूप से अर्थव्यवस्था, रक्षा एवं सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, हरित प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य व गतिशील संचालन क्षेत्र शामिल है। G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति अजाली असोमानी से मुलाकात की। राष्ट्रपति अजाली ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्य बनाने में प्रधानमंत्री मोदी की पहल एवं प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत की सफल G20 अध्यक्षता के लिए भी बधाई दी।
भारतीय संस्कृति दुनिया भर में अपनी विविधता और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। विविधता में एकता, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा दुनिया में भारत को अलग पहचान दिलाती है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत सरकार की ओर से विदेशी मेहमानों को जिस तरीके से भारत की परंपरा और साहित्य संस्कृति से अवगत कराया गया, वह वास्तव में अद्भुत था। यही वजह है कि विदेशी मेहमानों ने न सिर्फ भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए, बल्कि यहाँ की सभ्यता संस्कृति को जानने समझने के लिए भी उत्साहित थे। भारत की धरती पर G20 के दौरान जब विदेशी मेहमानों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया, तो उस समय का दृश्य ऐसा था जैसे पूरा विश्व भारत के रंग में रंग गया हो। आधुनिकता के साथ साथ विदेशी मेहमानों के परिधान न सिर्फ भारतीयता को वैश्विक बना रहे थे, बल्कि उस दौरान भारत की सांस्कृतिक धरोहर, चाहे वह नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिरूप हो या मधुबनी की पेंटिंग, सब चार चांद लगा रहे थे। साथ ही कला, संगीत, नृत्य से लेकर धार्मिक ग्रंथों के इतिहास को जानने समझने में भी विदेशी मेहमानों में उत्सुकता नजर आ रही थी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
G20 के शानदार आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया। भारत मंडपम तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया है। लोग उसके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं और गर्व से पोस्ट भी कर रहे हैं। भारत ने इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 में फुल मेंबर बनाकर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है। आपको ध्यान होगा, जब भारत बहुत समृद्ध था उस जमाने में हमारे देश में और दुनिया में सिल्क रूट की बहुत चर्चा होती थी। ये सिल्क रूट व्यापार कारोबार का बहुत बड़ा माध्यम था। अब आधुनिक जमाने में भारत ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 में सुझाया है। ये है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है और इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस कॉरिडोर का सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ था।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अक्षरधाम मंदिर में जमीन पर माथा टेक कर भगवान का आशीर्वाद लिया। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी ने मंदिर में आरती और जलाभिषेक भी किया। एनआरआई यदि भारतीय परिधान में दिखे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात न हो, लेकिन पश्चिमी देशों के लोग, वह भी वहाँ के राष्ट्र प्रमुख या उनकी पत्नी ऐसा करें तो भारत को अपनी विरासत और सभ्यता संस्कृति पर गर्व क्यों न हो। रात्रि भोज के दौरान कुछ विदेशी मेहमान साड़ी में तो कुछ सलवार सूट में नजर आईं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की पत्नी यूके और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की पत्नी इरियाना भी रात्रि भोज में साड़ी पहनकर भारत मंडपम पहुंची थी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा की पत्नी ऋतु बंगा साड़ी में नजर आईं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा भी सूट सलवार पहने हुए नजर आईं। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित G20 सम्मेलन में भारत मंडपम के साथ लगी शिल्प व हस्तकला प्रदर्शनी ने वैश्विक प्रतिनिधियों को अपनी ओर खूब आकर्षित किया। महिला प्रतिनिधियों ने शिल्प कला को अद्भुत बताया। WHO की प्रतिनिधि निकोल मेंस ने कहा कि भारतीय कलाकृतियों में ही यहाँ की संस्कृति समाई हुई है।
इतना ही नहीं, भारत की ओर से राष्ट्राध्यक्षों की पत्नी को भारतीय हस्तकला और शिल्प कला से जुड़े उपहार भी दिए गए। स्पेन के प्रधानमंत्री की पत्नी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारसी सिल्क स्टोल उपहार में दिया। बनारसी सिल्क स्टोल विवाह और विशेष अवसरों पर महिलाओं द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री की पत्नी को बनारसी स्टोल उपहार में दिया गया। ऐसे स्टोल का इस्तेमाल शादी विवाह में विशेष तौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की पत्नी को कश्मीरी पश्मीना स्टोल उपहार में दिया गया। इसे हाथ से बुनकर तैयार किया गया था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की पत्नी को प्रधानमंत्री मोदी ने टीक के बॉक्स में इक्कट का स्टोल दिया। यह सिल्क और कॉटन से तैयार होता है, जिसे ओडिशा के कलाकारों द्वारा तैयार किया गया था। जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी को कांजीवरम स्टोल उपहार में दिया गया। कांजीवरम स्टोल भारतीय बुनाई कला का एक अद्भुत उदाहरण है। क्राफ्ट के क्षेत्र में इसका कोई तोड़ नहीं है। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री की पत्नी को असम का स्टोल उपहार में दिया गया। यह दक्षिण पूर्व भारत की परंपरा का अद्भुत उदाहरण है।
इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना करते हुए 13 सितंबर को अपनी बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया। एक उज्जवल भविष्य के लिए केंद्र सरकार राष्ट्र को ऊर्जावान बनाने को लेकर प्रतिबद्ध रही है। इस दिशा में केंद्र सरकार लगातार काम करती रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने G20 के ही एक लक्ष्य, स्वच्छ और हरित ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को मंजूरी दी है। वहीं दूसरी ओर मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत हिमाचल और उत्तराखंड के लिए अतिरिक्त धनराशि मंजूर की है। अतिरिक्त धनराशि जारी करने से ऋण तक पहुंच प्रदान करने और औद्योगिक इकाइयों के विस्तार में मदद मिलेगी। G20 शिखर सम्मेलन और कैबिनेट के निर्णय की सभी जानकारी पत्रिका में विस्तार से पढ़ी जा सकती है। श्रोताओं, निश्चित रूप से दुनिया के सबसे शक्तिशाली आर्थिक समूह G20 को भारत ने अपनी अध्यक्षता में मानव केंद्रित, प्रकृति केंद्रित तो बनाया ही है, साथ ही नई दिल्ली शिखर सम्मेलन दुनिया के लिए एक मील का पत्थर बन गया है। भारत की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय भविष्य में विश्व के लिए बहुत ही असरकारक सिद्ध होंगे। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB India है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।